लंच का वक्त था। ईशान गुलाब जामुन बना रहा था जिसकी मीठी मीठी खुशबू हवाओं में घुल रही थी। रामू और रघु काम में लगे हुए थे। दोपहर का वक्त होने के कारण दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। ईशान पूरी लगन से काम में लगा हुआ था। तभी उसके कानों में रघु की आवाज़ पड़ी, बड़के चच्चा, आज यहाँ का रास्ता कैसे देख लिए? रघु की आवाज़ में हैरानी साफ जाहिर हो रही थी। उसके शब्द सुनकर ईशान ने चौंकते हुए निगाहें घुमाई। काउंटर के पास बड़े पापा रामविलास जी खड़े थे। उन्हें यहाँ देखकर ईशान भी चौंक गया। बड़े पापा की नज़रें ईशान पर ही टिकी थीं। ये देखकर ईशान ने तुरंत ही उन पर से निगाहें फेर लीं और रामू को देखते हुए बोला, रामू जरा इसे देख, मैं अभी आता हूँ। रामू ने तुरंत सिर हिलाया और जी भैया कहते हुए उसके पास आ गया। ईशान ने एक नज़र पीछे खड़े रामविलास जी को देखा, फिर निगाहें फेरते हुए कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। रघु, जरा देख ले इन्हें क्या चाहिए, ये शब्द ईशान ने वहां से जाते हुए कहे थे। रघु ने तुरंत ही उसके आदेश का पालन करते हुए सिर हिलाया, जी भैया जी। फिर उसने बड़े पापा को देखकर बत्तीसी चमकाते हुए पूछा, का चाहिए काका? रामविलास जी की निगाहें अंदर जाते ही ईशान पर टिक गई थीं। उन्होंने रघु की तरफ निगाहें घुमाईं और मायूसी से बोले, 2 किलो काजू कतली, 1 किलो गुलाब जामुन और 1 किलो केसर बर्फी पैक कर दो। रघु ने सिर हिलाया और काम में लग गया। कुछ देर बाद ईशान बाहर आया। तब तक बड़े पापा जा चुके थे। ईशान ने गहरी सांस छोड़ी और वापस अपने काम में लग गया। शाम का वक्त था। रजनी आज जल्दी घर आ गई थी। सुजीत जी पहले ही घर पहुंच चुके थे। घर में तनाव का माहौल था। सुजीत जी ने आते ही रामविलास जी के बारे में पूछा, पर वे कहाँ थे किसी को नहीं मालूम था। उन्हें फ़ोन भी किया गया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। शुभ्रा और शुभिका, जो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थीं, सबको परेशान देखकर चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थीं। कशिश सबसे ज़्यादा परेशान थी और मन ही मन खुद को कोस भी रही थी। हालांकि सुबह उसने जो कहा था वो गलत नहीं था और ना ही सोच समझकर या किसी इरादे से कहा गया था, पर फिर भी उसके कारण रामविलास जी नाराज होकर चले गए थे और बाकी सब परेशान थे, जिसके लिए वो खुद को दोषी मान रही थी। कशिश रजनी के साथ बैठी थी। तभी कुछ कदमों की आहट हुई और साथ ही रामविलास जी की आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज उठी, छोटी बहू। उनकी आवाज़ सुनकर सब एकदम से उठकर खड़े हो गए। रामविलास जी कशिश को छोटी बहू पुकारते थे। उनके पुकारने पर कशिश ने तुरंत जवाब दिया, जी बड़े पापा। सबकी निगाहें रामविलास जी के चेहरे पर टिकी थीं, जिस पर कोई दुख का भाव नहीं था, बल्कि आज वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। जो सुकून इस वक्त उनके चेहरे पर झलक रहा था वो सालों बाद देखने को मिला था। कशिश जल्दी से उनके पास चली आई। शायद माफ़ी मांगना चाहती थी वो उनसे, पर रामविलास जी उसे कुछ कहने का मौका ना देते हुए अपने हाथ में मौजूद मिठाई की थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, इस थैली में निकाल कर ले आओ और साथ में गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली कड़क चाय भी बना ले आना, हम हाथ मुँह धोकर आते हैं। कशिश ने थैली पकड़ते हुए तुरंत ही सहमति में सिर हिला दिया, फिर कुछ परेशान सी बोली, बड़े पापा सुबह बाद में बात करेंगे बहू, अभी हाथ मुँह धोआएं। रामविलास जी ने कशिश की बात काटते हुए अपनी बात कही और आगे उसे कुछ कहने का मौका ना देते हुए वहां से जाने लगे। तब कौशल्या जी उनकी तरफ आते हुए चिंता भरे स्वर में पूछ बैठी, आप ठीक हैं जी? सारा दिन कहाँ थी आप? आकर बताते हैं भाग्यवान, जरा धीरज धरो, रामविलास जी ने मुस्कुराकर कहा और कमरे में चले गए। बाकी सब परेशान से बस उन्हें देखते ही रह गए। कशिश मिठाई की थैली लेकर किचन में चली गई और डिब्बे से केसर बर्फी निकालकर प्लेट में रखने के बाद उसने चाय बनाई। उसकी मदद के लिए रजनी भी किचन में आ गई थी। चाय के साथ नमकीन, मट्ठी और मिठाई लेकर दोनों जब तक बाहर पहुंची, रामविलास जी भी हाथ मुंह धोकर वापस आ चुके थे। सबको चाय देने के बाद कशिश एक बार फिर रामविलास जी के पास चली आई और सिर झुकाते हुए मायूसी भरे स्वर में बोली, बड़े पापा सुबह मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके मन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं बस इतना कह रही थी कि किसी से प्यार करना, किसी पर विश्वास करना पाप नहीं होता। प्रेम तो महादेव भी करते हैं माता पार्वती से, और वो उनकी अर्धांगिनी भी हैं। फिर किसी को प्रेम करने की सजा देना गलत है। पापा ने सच्चे दिल से उनसे प्रेम किया था और उनका प्रेम शुद्ध और सच्चा था, इसीलिए उन्होंने सबके खिलाफ जाकर भी उनसे रिश्ता जोड़ा। उन्हें खुश रखने के लिए उन्होंने उन्हें आज़ादी दी, पर बदले में अगर उन्हें धोखा, धिक्कार, जिल्लत और लोगों के बाने मिले तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था। उनके लिए गलत फैसले की वजह से आप सबको बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, पर जो दुख, वेदना, पीड़ा, जिल्लत, अधूरापन, ताने उन्होंने आजीवन सहे, उससे ज्यादा नहीं सहा होगा आप सबने। दिल टूटा था उनका, लोगों के ताने उन्होंने सबसे ज्यादा सुने थे, उनके फैसले को गलत ठहराया गया था, जिससे सबसे ज्यादा अफसोस उन्हें हुआ होगा। अपने बच्चों को माँ के साय से विहीन देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें हुई होगी। आपने तो उन्हें दोषी ठहरा दिया, पर वो पल पल घुटते होंगे। आपने उन्हें परिवार से अलग करके सजा दी, पर उन्हें तो पहले ही किस्मत ने उस गुनाह की सजा दी थी जो उन्होंने किया ही नहीं था। जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनों के प्यार और सहारे की जरूरत थी, तब वो परिवार के बीच होकर भी तन्हा थे। बाहर वाले लोग तो 2-4 दिन बाद शांत हो गए होंगे, पर अपनों की नाराजगी ने उनके अंतिम समय तक उन्हें उनकी उस भूल का एहसास करवाया होगा जो उनसे अनजाने में हुई थी। मैं आपको या किसी को गलत नहीं कह रही, बस इतना कह रही हूँ कि पूरी तरह से गलत पापा भी नहीं थे। फिर भी आखिरी सांस छूटने तक वो आपकी दी सजा खामोशी से भुगतते रहे, लेकिन अब तो वो नहीं है। अब तो उस नाराजगी को खत्म कर दीजिए। जो भी हुआ उसमें मिश्रा जी या दीदी का कोई दोष नहीं, तो कम से कम उनकी माँ की करनी की सजा उन्हें तो मत दीजिए। कब तक इस परिवार को दो हिस्सों में बांट कर रखेंगे? बीती बातें भुलाकर उन्हें स्वीकार कर लीजिए। जब तक ये परिवार एक परिवार नहीं बन जाता, दीदी शादी नहीं करेंगी। उनके लिए इस नाराजगी को आप खत्म कर दीजिए। अगर ज्यादा बोल गई हूँ तो माफी चाहूंगी, पर घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज है घर को जोड़कर रखना, और ये कोशिश मैं अंतिम समय तक करती रहूंगी, जैसे पापा करते रहे थे। कशिश आई तो माफी मांगनी थी, पर आदत से मजबूर वो शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। उसका कहा एक एक शब्द सच्चा और सही था। बाकी सबके साथ रामविलास जी भी खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। कशिश के चुप होने के बाद वहां गहरा सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा कि अगर एक पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज सब साफ साफ सुन सकते थे। सबकी निगाहें कशिश पर टिकी थीं, जिसके चेहरे पर इस वक्त गंभीर भाव मौजूद थे। कुछ पल की खामोशी के बाद रामविलास जी ने भावुक होते हुए कहा,
आप इतने कम उम्र में ये सब समझ गईं, पर हम आपसे इतने बड़े और अनुभवी होते हुए आज तक नहीं समझ पाए, या शायद समझना चाहा ही नहीं। अपनी नाराजगी और अहम में इतने अंधे हो गए कि कभी अपने भाई का दर्द, उनकी तकलीफ देख ही नहीं सके। जिस परिवार को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी, उसी परिवार को दो भागों में बांट दिया। आप ठीक कह रही थी, जो हुआ उसमें अगर किसी का दोष था तो वो बहू थी, पर सजा हमने धीरज और उनके बच्चों को दी। पहले कभी हमने इस तरह से सोचा ही नहीं। आज आपके किए एक सवाल ने हमारी आंखों पर बंधी नाराजगी और अहम की पट्टी को खोल दिया। एकांत में कुछ वक्त बिताया तो हर पहलू के बारे में गंभीरता से सोच सके, और तब हमें एहसास हुआ कि गलत धीरज नहीं, हम थे, जो उन्हें मुश्किल वक्त पर अपने अहम के कारण हमने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उन्हें उस गलती के लिए दोष दिया जो उन्होंने किया ही नहीं था। उन्हें उस गुनाह की सजा दी जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं थी। हमारे लिए उस गलत फैसले ने सब बिखेर कर रख दिया, पर आपने इस घर में आकर रिश्तों को फिर से एक धागे में पिरोया, हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाया। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, गलत हम और हमारी सोच थी, और अब हम अपनी हर गलती को सुधारेंगे। रामविलास जी की आंखों के कोर भीग गए थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सबकी आंखें आज नम थीं। रामविलास जी अब एक तरफ खड़े रजनी के पास चले आए और अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। हम नाराज थे आपके पापा से, क्योंकि उनके वजह से हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया, जबकि जया को उन्होंने कभी आपसे अलग नहीं समझा था। आज उनकी जिंदगी में जो खुशी है वो धीरज की वजह से है। उनके वजह से रिश्ता टूटने का इल्ज़ाम लगाया था हमने उन पर, जिसे वो खामोशी से स्वीकार कर गए और खुद से जया के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा। उन्होंने हमेशा अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। हमारी बेटी को अपनी बेटी समझकर उन्होंने उसका घर बसा दिया, पर हम अपनी नाराजगी में इतने अंधे हो गए कि ना उन्हें अपना समझा और ना ही ईशान और आपके प्रति कोई फर्ज निभाया। अपनी एक बेटी का घर बसा देखकर निश्चिंत हो गए, पर भूल गए कि अभी हमारी एक और बेटी के विवाह की जिम्मेदारी है हम पर। धीरज ने आपके लिए सुयोग्य वर का चुनाव किया था, पर आपका विवाह न कर सके, और हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पर आज हमारी आंखें खुल गईं। कशिश बहू ने आज हमारे सामने हालातों के उस पहलू को रखा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, और हमारा सामना हकीकत से करवा दिया। हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया, और अपनी गलती सुधारते हुए हमने आपकी और अभिषेक की शादी की तारीख निकलवाई है। माघ मास की एकादशी 12 फरवरी की तारीख निकली है। समधी जी के घर जाकर सब बात पक्की कराए हैं हम, और अब 12 फरवरी के दिन इस घर की एक और बेटी की धूमधाम से विवाह करके हम उन्हें इस आंगन से विदा करेंगे। रामविलास जी की बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी ने भी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रामविलास जी ऐसा भी कुछ करेंगे। जहां बाकी सब हैरान परेशान से उन्हें देखे जा रहे थे, वहीं कशिश के लबों पर मुस्कान फेविक्विक लगाकर चिपक गई थी। पिछले 2 महीने से यही कोशिश तो कर रही थी, पर पूरी बात से अनजान थी। लेकिन अब जब वो सब जानती थी, ईशान के दर्द को उसने इतनी गहराई से महसूस किया था, तो उसने ठान लिया था कि उसके दर्द का अंत करके रहेगी, रिश्ते में आई नाराजगी की दूरियों को मिटाते हुए इस परिवार को एक करके रहेगी, और आज अपने उस मकसद को पूरा करने की एक कोशिश की थी उसने। जो हुआ उसके एक अलग पहलू को सबके सामने रखा था, और कामयाबी मिली उसे, इसलिए वो बहुत खुश थी। एक तो अब ये परिवार एक होने जा रहा था, ऊपर से रजनी की शादी की तारीख निकल गई थी। यही तो परेशानी थी ईशान की, जिसका अंत कशिश को आज नजर आ रहा था। रजनी की आंखों में ठहरे आंसू पलकों के बांध को तोड़ते हुए उसके रुखसारों को भिगोने लगे थे। कितना इंतजार किया था धीरज जी और उसने इस दिन का। एक लंबे इंतजार के बाद आज धीरज जी की आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी। रामविलास जी ने अपनी नाराजगी मिटाकर उन्हें अपना लिया था। रामविलास जी का स्पर्श उसे ऐसा लगा मानो धीरज जी ने अपना प्यार भरा हाथ उसके सर पर रख दिया हो। उसे रोते देखकर सालों बाद रामविलास जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। हर किसी की आंखें नम थीं, पर लबों पर मुस्कान सजी थी। सबका ध्यान रामविलास जी और रजनी पर था। कशिश भी उन्हें ही देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। वहां खड़े ईशान को देखकर पहले तो कशिश चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मिश्रा जी, आज बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं।